نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخرت کی عدالت کے چند اصول، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. پی کے ٹرپ 22-23 کا یہ ایک لیکچر ہے. ہم اس میں جس تھیم پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے قرآن کا مطلوب انسان. ہم لوگوں کی مرضی کے تو بن نہ سکے، آئیے اب اللہ کی مرضی کا بننا چاہتے ہیں، پھر نتائج دیکھیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ایک رب کو منانا آسان ہے، ایک رب کی مرضی پہ چلنا بہت آسان ہے، لیکن انسانوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. ہم اس دنیا میں ہر لمحے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کی رائے، دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے، لوگ لوگ لوگ. اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ تو آخر میں بس ایک ہی بات کہیں گے، اور وہ کیا ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی اچھی تھی، اللہ معاف کرے، اللہ بخش دے. میں نے دیکھا خواتین اپنی ساسوں کا نام لے کر کہتی ہیں اللہ معاف کرے میری ساس کو، زبان کی بڑی تیز تھی، یعنی اللہ کر دے معاف، میں نے نہیں کرنا، بس اللہ ہی ان پہ رحم کر دے، ویسے بس معاملہ ٹھیک نہیں تھا. تو لوگوں نے آپ کے میرے بارے میں آخری کمنٹ یہی کہنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے. اس وقت سب اپنے آپ کو میدان حشر میں محسوس کریں، یہ سب چکا چون اور یہ چمک دمک سب کو چھوڑ کر اندھیری قبر، اور ایک آواز ہے سورۃ تبس. آج بہت ساری آیتوں کے نمبر نوٹ کروانے والی ہوں، اس لیے کاغذ قلم سنبھال کر رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اپنے اوپر لے، آپ میدان حشر میں سب آپ کے رشتہ دار ادھر دکھ رہے ہیں، وہ ابو، وہ بھائی، وہ شوہر، وہ بچے بھی دکھ رہے ہیں، سب دکھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے، سورۃ معارج کہتا ہے یبصرون، ہم دکھائے جائیں گے. قیامت کا دن، انسان کی زندگی میں آئے ہوئے ہر دن سے بڑا دن، اہم دن، عظیم دن ہے. اس دن ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا. قربان چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ذریعے ہمیں مستقبل کی خبریں مل گئیں، پیپر آؤٹ ہو گیا، ایسے لگتا ہے قیامت آنکھوں دیکھا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. تصور میں لائیے کوئی دن آپ بہت پریشان تھی، پتہ نہیں شوہر کدھر رہ کے، فون کر رہی ہوں فون نہیں اٹھا رہے، کال کرتی ہوں کاٹ دیتے ہیں اور خبر نہیں ہے، گھبراہٹ ہوتی. جوان بیٹا اور اللہ سب کی حفاظت کرے اکلوتا بیٹا، آیا نہیں ابھی تک گھر، اللہ خیر کرے. وسوسے آتے ہیں؟ آتے ہیں، ہم سب کو آتے ہیں. دنیا میں محبتوں سے اللہ نے آپ کو مجھے بھر کے بھیجا، قیامت کی کینچی محبتوں کی سب ڈوریاں کاٹ دے گی. ہر ایک شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی. اسی سیریز کا ایک لیکچر پیچھے ہو چکا ہے، نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. حتیٰ کہ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی اسے یہی کہیں گے، نفسی نفسی، اللہم سلم، اللہم سلم، کہ یا تسلمنی سلمنی. ایک ہستی ایسی ہوگی جو غم گزار تھے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو بچا کے رکھا، صرف وہ بولیں گے نفسی نفسی کے بجائے اللہم امتی امتی. دو دن دن پہلے لاہور میں ہوا ہے، سنیے گا، سننے کے قابل موضوع ہے کہ کسی غم گزار کی محبتوں کا کیا صلہ ہم نے دیا. وہ جو ہمارے غموں میں راتوں کو جاگا، جس نے اپنے بچے کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بھی تو ایک دعا کا حق دیا ہے نا، تو آپ دعا کریں ابراہیم زندہ ہو جائے. سوچیے اکلوتا بچہ، نرینہ بچہ پوت ہو رہا ہے، ہو گیا، कहती हैं आप तो नबी हैं ना, और अल्लाह ने हर नबी की तरह आपको भी एक दुआ का हक दिया है। तब अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह ताला इब्राहिम को ज़िंदा कर दे। तब ने फरमाया कि आयशा नहीं, मैंने वो दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी है। औलाद नहीं थी, दो दो महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। वहाँ बदर से उहद, उहद से आगे लेके तबूत तक के मराहिल भी आए, और वहाँ हिजरत की राहें भी हैं, कहीं भी वो दुआ मांग लेते। लेकिन आप चाहते थे कि क़यामत के दिनों में से एक सख्त दिन जो मेरी उम्मत पे आने वाला है, मैं उस दिन के लिए इसको बचा लूँ। आप भी जमा पूंजी रखते हैं, सेविंग्स, ये कभी काम आएगा, या बच्चों की शादियों पे काम आएगा, ये वहाँ दे देंगे, ये वहाँ ले लेंगे। नबी ने अपनी सबसे कीमती दुआ आपके मेरे लिए क्यों बचा के उस दिन रखी? इसलिए कि क़यामत का दिन बहुत सख्त दिन है। आज हमने लफ्ज़ क़यामत पे नावल लिखे, फिल्मों के नाम, हीरोइनों को क़यामत कहते हैं, क्या क़यामत लग रही हो, शायरी में क़यामत, उसकी चाल क़यामत जैसी, चाल ऐसी चलूं कि क़यामत ढाऊं। जिस दिन असल क़यामत आएगी, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, उस दिन बंदा अपने भाई से भाग रहा होगा। मुझे पता है बहनें भाइयों से कितना प्यार करती हैं। अपने भाई को जहन में लाइए, एक हैं या जायद, अल्लाह सबको सलामत रखे, और उस दिन आप अपने उस भाई से भाग रही हैं। क्यों? वह उम्मी ही भाभी, माँ से भी बाप से भी, माँ बाप भाई बहन, शादी से पहले का टोटल विरसा यही होता है। बचपन में ये तीन चार रिश्ते इतने अजीज होते हैं कि इंसान कई बार सोचता है कि अल्लाह मुझे इनमें से किसी का गम ना दिखाना, मुझे सबसे पहले मौत देना, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू की मौत नहीं सुन सकती, देख नहीं सकती, भाई बहनों की नहीं सुन सकती, देख सकती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब बड़ा होता है, माँ का घर छूटता है, तो साहिबती ही वह बनी, फिर बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी और बच्चे, यानी वह जो भाई बहनों और माँ बाप की जगह होती है ना, उस कोनों में अब बीवी शौहर और बच्चों की मोहब्बत आती है। क़यामत का दिन कैसा दिन है कि आप अपने मैके से भी जान छुड़ा रहे हैं और साहिबती ही वह बनी, ससुराल से भी जान छुड़ा रहे हैं। वजह, भागो भागो, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं किसी की मदद करनी। क्यों? लिकुल्लि इम्रिम मिन्हुम यौमा इज़िन शअनुन युग्नी, इसलिए कि उस दिन हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह आप सबको सेहत दे। बच्चों वाली माएँ इधर बैठी हैं, बच्चा बीमार हो, माँ को चैन नहीं आता, गोद में लेती है, कभी दवा पिलाती है, फिर गोद से उठाती नहीं, कहती नहीं इसको उठाया तो लिटाया तो उठ जाएगा, और बच्चा है कि सो के ना दे। एक रात माँ जाग लेगी, अगर अगला भी दिन आ गया और नहीं सोई, अगली रात किसी को भी कहेगी इसको पकड़ो, मैं सोने लगी हूँ। कहते हैं ना कि नींद सूली पे भी आ जाती है। इंसान एक दो रातों से ज़ायद किसी के लिए नहीं जाग सकता, और खुदा न खास्ता माँ को खुद तकलीफ़ हो गई। कैंसर ज़दा माओं को देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, कहती इनको बाहर ले जाओ, मुझे इनकी आवाज़ों से घबराहट होती है। मैंने ऐसे बापों को भी देखा है, कहते हैं ये लोग मेरे पास जो बातें करते हैं ना, मुझे सुनने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है, मेरे अंदर उसकी हिम्मत नहीं। जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तो इंसान को समझ आती है। किसी ने एक तजुर्बा भी किया था, एक पिंजरा केज, उसमें बंदरिया और उसका बच्चा रखा, सिर्फ मिसाल समझने के लिए। वो बंदरिया अपने बच्चे से प्यार कर रही है, लाड कर रही है। इसके बाद उन्होंने उस पिंजरे के नीचे हल्की हल्की सी आग जलानी शुरू कर दी। अब उसकी जो तारें थी वो गर्म होने लगी, तो वो थोड़ी सी बेचैन हो गई, बच्चे को उठा के इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, हत्ता कि वो उसकी जो दीवारें थी ना उस पर चढ़ गई। अब आग के साथ साथ पिंजरा गर्म होता गया, और आपको पता है कि जब उसकी तपिश बढ़ी कि उसके पांव जलने लगे, उसी बच्चे को नीचे फेंक के उसके ऊपर खड़ी हो गई। अब सोचिए, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, हमारा क्या बनेगा, उस दिन के लिए क्या तैयार किया। तो हकीकत यह कि ये दुनिया दारुल अमल है और आखरत दारुल जजा है। इस दुनिया में इम्तिहान दे रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज एन एग्जामिनेशन हॉल। आखरत का दिन क्या है? रिजल्ट का दिन। नथिंग विल बी न्यू, नथिंग विल बी अनएक्सपेक्टेड, कोई वहां होनी बात नहीं होनी, और कोई ऐसी बात नहीं होनी जिसको आप कहें कि पता नहीं ये क्या हो गया। चलिए बहुत बड़ी बात कहने लगी हूँ, इजाजत हक तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच देने के लिए, आपको क्या लगता है, आप जन्नत में जाएंगी या कहीं और? हर एक खुद से पूछे, हाथ खड़ा कर दे, कौन कौन सोचता है कि वो जन्नत में जाएगा? इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब हाथ नीचे करें। किस किस को ये खौफ है कि कहीं मैं जहन्नम में ना चली जाऊं? कितने लोग हैं जो कहते हैं पता नहीं। देखिए ना, तो आपको यकीनी जन्नत पता है ना या जहन्नम, पर आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं पता नहीं किधर जाना है, अल्लाह जिधर ले जाए वो हाथ खड़ा करें आप। इसलिए कि हम सबको पता है, मुझे भी पता है मैं कहाँ जाऊंगी। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुल जन्नति वअस्हाबुन नार, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। सूरत हशर में अल्लाह ने ये बात कह दी। क्यों कह दी? इसलिए कि जन्नती और जहन्नमियों का जीना मरना फ़र्क है, उनकी पसंद नापसंद फ़र्क है, उनकी प्रायोरिटीज और उनकी लीज प्रायोरिटीज फ़र्क है, दोनों एक जैसा नहीं जीते। हम में से हर एक को पता है कि हम कहाँ जाएंगे। दलील है कुरान में सूरत क़यामत, बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलव अल्का माजीरा, बल्कि इंसान अपना हाल खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने कितने उजर पेश करें। क़यामत की घड़ी एक खौफनाक और ज़बरदस्त घड़ी है, उस दिन हर शख्स कटहरे में मौजूद होगा। कभी किसी ड्रामे में या फिल्म में खुदा ना खास्ता कभी देखी हो अदालत का मंजर देखा? क्योंकि मैं नहीं कहती कि आप में से किसी को अल्लाह हकीकत में दुनिया की अदालत दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी अदालतों के चक्कर न लगवाए, लेकिन क़यामत के दिन को एक अदालत के मंजर से समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपने रब के पास से उस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे जब तक इससे 5 सवाल न कर लिए जाएं। 5 questions विल बी आस्क्ड। दुनिया में आपने जब भी कभी मैट्रिक किया होगा, मिडिल किया होगा, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त 8 सवाल आते थे क्वेश्चन पेपर में, उनमें से एक लाजमी होता था शुरू में पहला, बाकी 7 में से 4 कर लें तो टोटल 5 सवाल होते थे। वो जो पहला लाजमी था ना, वो ज़रूर करना है, अगर वो नहीं किया तो फेल थे, और बाकियों में से जो मर्जी कर लें। आपकी मेरी इस जिंदगी के भी कितने सवाल हैं? 5। अल्लाह ने आपको मुझे दुनिया में कुछ मामलात ऐसे दिए जिसको फ़राइज कहते हैं, शहादतैन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बुनिय अल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है, ठीक है? तो नमाज नहीं है ना तो बाकी बातें ज़ाया, अकीदा गलत है तो नमाज भी ज़ाया, नमाज और अकीदा ठीक है तो नबी पर ईमान में गड़बड़ है तो गया, और इसी तरह से फिर एक से एक। हम सब अपनी पहले तो इस कैफियत को महसूस करें, क्या फ़राइज मेरे पूरे? हमें कितने लोग हैं जो यहाँ बैठकर ये कह सकते हैं कि मेरे सर पर एक भी फ़र्ज कर्ज नहीं है, कोई एक फ़र्ज कज़ा नहीं है मेरा छुटा हुआ नहीं, कभी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता आगे पीछे हुआ तो मैंने पढ़ ली फ़ौरन। खुशकिस्मत है आप, और अगर कोई छुटा हुआ है तो उसकी फ़िक्र करनी है। लेकिन इस हदीस में ला तज़ूल क़दमन इब्ने आदम मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअल अन्हु खमसा, आदम का बच्चा या आदम का बेटा क़यामत के दिन कदम नहीं हटा सकेगा जब तक के 5 सवालों के जवाब न दे। किस किस को पता है ये 5 सवाल? हैंड रेस करें, फिर मैं आपके साथ दोहराती हूँ। पहला सवाल, अनुमरी ही फी माफना, उम्र किस काम में ख़त्म की? ये आपकी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, एज, ये बचपन से लेके जवानी, जवानी से बुढ़ापा और फिर मौत। पहला सवाल, वेयर डिड यू स्पेंड योर लाइफ, तुम्हारी क्या सरगर्मियाँ थी, तुम्हारे फिक्र क्या थे? यहाँ बैठे अभी सोचें क्या फिक्र लगा हुआ है, घर जाके हांडी बनानी, कहीं जाना है, कोई दावत है, कोई शादी है, सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे काम है, कोई बुरा नहीं, लेकिन क्या सिर्फ मेरी ज़िंदगी का मकसद इसी दुनिया का सर्वाइवल तो नहीं रह गया? रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, सुबह से शाम होती है ज़िंदगी, यूं ही तमाम होती है। कभी बैठकर आपने मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या? रोज़ खा पी के घर साफ करके चीज़ें समेट के सोते हैं, सुबह उठ के फिर खिलारा पड़ जाता है, फिर भूख लगी होती है, फिर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, फिर सफाई कर रहे हैं, फिर हांडी बना रहे हैं, फिर रोटियां बना रहे हैं, वो सेम नहीं? ईट एंड स्लीप एंड रिपीट, खाओ पियो और सो और दोबारा दोहराओ, आखिर इसका मकसद क्या? आज आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? शौक था आपको यहाँ आने का बैठ के? आपका मकसद है? हम दिन में दो तीन दफा भी अगर वॉशरूम में जाते हैं तो वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाने का कोई मकसद होता है। आप तो फ्रिज भी बिना मकसद नहीं खोलते, तो क्या ये इतनी खूबसूरत जिंदगी? अल्लाह के इतने तोहफों में बड़ी हुई जिंदगी, क्या ये बेमकसद है? नहीं, बहुत सारों को नहीं पता उम्र कहाँ गुजारी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने ये बात कह दी, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। और इबादत को हमने बस नमाज रोजे पर रख दिया, ये इबादत नहीं थी, ये इबादत की तैयारी थी। ये आपके अंदर ईमान भरने के तरीके थे कि पांच वक्त की नमाजों से आपके अंदर ईमान भर जाए, फिर रोजे बाकी इबादत से, और फिर फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फस्तबिकुल खैरात, फस्तबिकुल खैरात, एक दूसरे से आगे बढ़ो। देखिए आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, क्यों? मकसद है? नहीं, जरूरत है, पेट्रोल डाल दिया। घर के गैरेज में गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल डाल दिया, क्या करें? चाबी लगा के गाड़ी खड़ी को चला दें, एक दो घंटे में पेट्रोल भी जल जाएगा और गाड़ी की बैटरी भी डाउन हो जाएगी और गाड़ी भी गर्म हो जाएगी। कोई गाड़ी में पेट्रोल डाले और जाके उसको अंदर बंद कर दे, भाई निकालो, नहीं नहीं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं गाड़ी खराब हो जाएगी, तो कोई कहेगा नहीं क्यों? जब गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि अब इससे चलाओ, मस्जिद जाओ, मदरसे जाओ, घर के लिए मियाँ को शॉपिंग करनी है कराएं, जॉब पे जाओ, बहन भाइयों को मिलो, अपने काम करो। जब गाड़ी में पेट्रोल कम होने लगे, दोबारा जाकर किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी फिल करा दो, ये करते हैं ना। अब यहाँ एक मिसाल आज से ज़रूर जहन में रखिएगा, ये जो दिन में पांच बार हम नमाज पढ़ते हैं ना, ये हम अपनी टैंकी फुल कराते हैं ईमान की। मिसाल से अक्सर समझाती हूँ, शायद आप में से किसी को फ़ायदा हो। तीन दोस्त एक पेट्रोल पंप पे मिले, फर्स्ट को, तीनों के पास सेम नई गाड़ी एक ही मॉडल की, तीनों ने गाड़ी फुल करा दी, चले गए। अगले महीने फर्स्ट को दोबारा वही मिले, सुनाओ भाई, एक कहता है उस दिन जो पेट्रोल डाला था उसके बाद आज आया हूँ। अच्छा, दूसरा कहता नहीं, मैं तो 15 दिन बाद फिर आया था। तीसरा केक, अच्छा मैं तो हर हफ्ते आता रहा, मैंने तो 4 दफा पेट्रोल डलवाया। फर्क किस बात का? पहले ने गाड़ी कम चलाई, दूसरे ने जरा ज्यादा चलाई, चौथे ने बहुत चलाई। अगर गाड़ी चलाई ना जाए तो पेट्रोल और डलता है? बस ये सवाल का जवाब है। साहबे कराम इतना कुरान पढ़ लेते थे, उनसे और भी पढ़ा जाता था, हमसे एक सफ़े से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। वो पांच फराइज पढ़ के फिर इशराक और चाश्त और तहज्जुद भी पढ़ लेते थे, हमसे फर्ज नहीं पूरे होते। क्यों? क्योंकि नमाज से जो एनर्जी मिलनी थी वो यूज नहीं हो रही। ये है वो चीज जिसको अल्लाह कहते हैं वत्तवासुबिल हक की वत्तवासुबिस सब्र। तो पहली बात जिस पे करके आगे चलती हूँ, क्यामत के दिनों का पहला सवाल क्या है कि आपने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी? चलिए अभी इसको साइड पे करते हैं। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन, अन शबाबी ही फी माबला हो, जवानी कहाँ पुरानी की? यूथ, सवाल लिखिए कि क्या पहले सवाल के अंदर जवानी नहीं आ गई? क्या जवानी, यंग एज, यूथ एज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ? यस, तो फिर खाली जवानी का फिर सवाल क्यों? ये तो ऐसे ही है कि एक पेपर पहले कर दिया, अब दोबारा आप ले रहे हैं। और मजे की बात है, बुढ़ापे का कोई सवाल नहीं अलग, और बचपन का भी नहीं है। इसलिए कि सबसे ज्यादा प्लानिंग के साथ, इरादों के साथ, गज वज के गुना जो हम करते हैं वो जवानी में करते हैं। बल्कि माजरत के साथ, बहुत सारों के तो जहन में तसव्वुर ये है कि जवानी है ही गुना करने की उम्र। बेटा तुम चली जाओ, मेरे बूढ़े का वहां क्या काम? जवानी दीवानी, जवानी मस्तानी, नहीं। याद रखिए कि आप में से जो भी यहां यंग बच्चियां बैठी हैं, और आप जो माएँ बैठी हैं जवान बच्चियों वाली, आप सब के लिए ये जवानी की उम्र बड़ी कीमती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हमारी यूथ में दीन और ख़ास तौर पर कुरान सीखने का बहुत रुझान है। अपनी जवान बच्चियों पर रहम करें, यही उम्र होती है सीखने की, इसी में ही इंसान कहीं किनारे पर लग जाए तो लग जाता है। ये जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, बेदाग जवानियाँ बुढ़ापे का सुकून होती हैं। जवानी में एक दफ़ा दिल पे कोई दाग लग जाए, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन ये सवाल होगा। तीसरा सवाल, अन मालिन मिनैन अक्तसबहु, माल के बारे में कहाँ से कमाया? और चौथा सवाल भी माल का है, मिनैन अनफक़हु, खर्च कहाँ किया? What was your source of income? And उसके बाद where did you spend it? कहाँ खर्च किया? आप कहेंगे माल तो मर्द कमाते हैं, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो खर्च कौन करता है? एक जोड़ा कितने का आता है? एक जूता कितने का आता है? घर में पहले ही 10-15 बेडशीट पड़े हैं, फिर 2-3 कौन लेके आता है? क्या ज़्यादा पैसा हम औरतें नहीं खर्च करती? सोचने की बात, ज़रूरियात पे कीजिए, कोई बुरी बात नहीं, अपने आराम के लिए भी कीजिए, आराइश ज़ेबाइश दोनों पे कीजिए, नमाइश पे नहीं कर सकता। अपने लिए पहने, अपनी ज़ात का कंफर्ट रखें, एक एक पैसे का हिसाब होगा, और ख़ास तौर पे फिर उस वक़्त जब अपनी ज़ात पे लगाते हुए तो दिल ना दुखे, और अल्लाह के रास्ते में देते हुए पुराना गंदा नोट ढूंढते हैं कि ये किधर चंदा बॉक्स में डालें, बल्कि रेजगारी अल्लाह तो वो कबूल करता है, लेकिन बंदा खुद भी सोचे। और पांचवा सवाल होगा, माज़ा अमिला बिमा अल्लमा, जितना इल्म मिला उस पर अमल कितना किया। ये सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 2690। तो आज की पहली बात आपने यहाँ से उठने से पहले दोहरा लेनी है, क़यामत के दिन के 5 सवाल, पेपर आउट हो गया, तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, हम आखरत को एक अदालत से रिलेट करके चंद चीज़ें समझेंगे, जो आज का टॉपिक है, कि दुनिया की अदालत से आखरत की अदालत बहुत मुख्तलिफ हो गई, और उसके कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलिए चंद कवानीन आखरत की अदालत के। नंबर एक, सब लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे, वन ऑन वन बेस पे आपका अल्लाह के सामने हिसाब होगा, कोई कहीं गायब नहीं होगा। दलील सूरत यासीन की आयत 32, वइन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, मगर ये कि वो सब के सब हमारे हजूर हाजिर किए जाएंगे। ज़रा सा महसूस करो, कभी एकदम हाथ रोक के ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोका, बाहर आइए, गाड़ी के कागज़ दिखाइए, अपना पासपोर्ट दिखाइए, आप फलां दिखाइए। कभी इमिग्रेशन में से गुजरे, उम्र या हज पे गए, कितना मुश्किल होता है अगर कोई आपको मुझे रोक के कह ठहर दो, बाकी सब गुजर करो, इनको एक साइड पे कर दो। मैं ट्रैवल काफ़ी करती हूँ, अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से, सफ़र से बहुत सीखती हूँ। अपने मुल्क में आप सारी दुनिया को जानते हो ना, सारे शहर को, वहाँ कोई नहीं जानता आपको, वन बाय वन एक एक गुजरता है। इवन एक साथ जो फैमिली ट्रैवल करती है उसमें से भी हर एक का पासपोर्ट अलग खोलते हैं। ज़रा सोचिए तो सही, आँख खुले और सामने रब को पाएं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा हूँ हिसाब लेने के लिए। दुनिया में एक पुलिसमैन, एक इंस्पेक्टर, एक कोई इमिग्रेशन ऑफिसर या ABCD, वो सामने आके 4 सवाल करे तो हाथ पांव बढ़ जाते हैं, और जब अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन सामने होगा तो क्या बनेगा। इससे क्या सीखना है? इसी के सहारे पे मत रहिए। सफर में अमूमन लोग कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए, खुदा ना खास्ता एक दूसरे से बिछड़े तो आपका आईडी कार्ड तो आपके पास हो, तो क़यामत के दिन सब वन बाय वन अल्लाह के सामने होंगे। दूसरा सुन लीजिए, ये सारे गोत्र करा के बाद में आप पे छोड़ दूंगी। अदालत में इंसान की पेशी सख्त निगरानी के साथ होगी, जिसको आप कहते हैं कैमरे की आंख आपको देख रही है, हर एक पे गहरी नजर होगी। इसकी दलील सूरह क़ाफ की आयत नंबर 21, वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। तसव्वुर में लाइए कि आप अपनी कब्र से निकाली जा रही हैं। हर इंसान जब कब्र से निकलेगा ना, तो वहां दो फरिश्ते होंगे, एक का नाम साइक और एक का नाम शहीद। ये वही है जो इधर किरामन कातबीन है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एक आपकी नेकियां लिखने पे और एक आपके गुनाहों को लिखने पे मुसल्लत था। ये दोनों उस पुलिस मैन की तरह जो किसी भी मुजरिम को नहीं बल्कि मुलजिम को हथकड़ियां लगाकर आगे पीछे रहकर अदालत की तरफ लेकर जाते हैं। तीसरा असूल क्या है उस अदालत में? किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। दुनिया में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, वहां नहीं होगा। इसकी भी दलील सूरत क़यामत की आयत नंबर 29 है, 29, मा युबद्दलुल क़ौलुल लदैया वमा अना बिज़ल्लामिल अबीद, मेरे यहाँ बात बदलती नहीं है, ورنہ میں اپنے بندوں پر ذرا سا ظلم کرنے والا ہوں. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں آپ کے اپنے ملک کی عدالتوں میں کتنے بے گناہ پڑے ہوئے اور کتنے ملزم مجرم باہر پھر رہے ہیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہتے بات نہیں بدلتی, یعنی میری بات پتھر پہ لکیر ہے. چوتھی بات, چوتھا اصول, انسان کا نام اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. بچہ فیل ہو اور آپ اس کی رپورٹ کارڈ اس کے سامنے رکھ کے کہ آؤ ادھر سٹیج پہ کھڑے ہو کے سب کو اپنے نمبر بتاؤ, اس دن ساری فائلیں کھول دی جائیں گی. ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا انسان اپنے سامنے پائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سورۃ بنی اسرائیل آیت 13, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. جو ہار پہنتے ہیں نیکلس, ایک نیکلس ہم نے اپنے وہ پہنا ہوا ہے جو آج نہیں دکھ رہا لیکن دکھے گا وہاں جا کے, اور قیامت کے دن اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا, اقرا کتابک, آج اپنی کتاب خود پڑھو. ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا, نشر کر دی جائے گی, براڈ کاسٹ ہو جائے گی. وہ یہ نہیں ہے کہ ڈھک چھپ کے کوئی گناہ کیا تھا تو وہاں ڈھکا چھپا ہے, وہ وہاں سب کے سامنے. دیکھیں آپ ادھر ایک بڑا سا پروجیکٹر لگا دیں اور پیچھے اسکرین پہ بڑی بڑی تصویریں دیکھیں, وہ کونے میں بیٹھے وہ کو بھی دیکھے. قیامت کے دن بہت بڑے بڑے پروجیکٹرز ہوں گے اور اس میں آپ کی میرے فیسز اور ہمارے ایکشنز نہیں آئیں گے, ہمارے سینوں کی بھی تصویریں آئیں گی. بہت سلا مافسد, ڈھکا چھپا کھل جائے گا. پھر ایک اور اصول, پانچواں اصول کیا ہے قیامت کا, کہ آخرت کی عدالت میں انسان کے دفاع کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا. دنیا میں لوگ وکیل رکھتے ہیں نا, لائر جو آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے, وہاں نہیں ہوگا. بلکہ اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. اسی سے اگلی آیت ہے بنی اسرائیل کی 14, اپنا حساب خود پڑھو, دوسروں کی فکر چھوڑو اپنی کرو. آج دنیا میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, فلاں کیا کر رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ منافق ہے, وہ ریاکار ہے, وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, وہ فلاں منافق اور یہ وہ. اس دن صرف اپنی فکر ہوگی. چلیے, دنیا کی عدالت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے سفارش اور رشوت. تو اگلا اصول لکھ لیجئے, آخرت کی عدالت میں کوئی سفارش اور کوئی رشوت نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی, کہ وہاں اجازت ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات, نہ اولاد کام آئے گی, نہ رشتہ دار, نہ مال و دولت, نہ کوئی رتبہ. دلیل سورۃ بقرہ کی آیت 48, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور اس کی سفارش بھی قبول نہ ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور اس سے کوئی بدلہ یعنی فدیہ رینسم وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی, باپ کے بدلے بیٹا یا مالک کے بدلے غلام, نہیں, جس نے کیا وہی. بلا ہم ینصرون, اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. کتنا تنہا کر دینے والا وہ دن ہوگا. ساتواں اصول بھی لیجئے, کسی کے نام میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا. جس کا نام اعمال ہے اسی کے ہینڈ اوور کیا جائے گا. دنیا میں پیپر مل جاتے, مکس اپ ہو گئے, رزلٹ بدل گئے, اس کی فائلیں ادھر چلی گئیں, اس کی ادھر چلی گئیں, رب کے ایسٹیمیشن میں کوئی غلطی نہیں. کیونکہ سورۃ مریم آیت 64, فَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے, یعنی اللہ کے اکاؤنٹس میں کوئی ایرر نہیں ہے. اور آٹھواں اصول نوٹ کر لیجئے, اعمال تولنے کا پیمانہ یعنی تکڑی یا ترازو بہت سینسٹیو ہوگا. سورۃ انبیاء 47, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ, اور اگر ایک دانے برابر بھی کچھ ہوگا, من خردل رائی کے, ایک دانہ رائی کا رکھے نظر ہی نہیں آئے گا, अल्लाह ताला फरमाते हैं तईना बिहा, हम उसको भी निकाल के ले आएंगे। वकफा बिना हासिबीन, और हम काफ़ी हैं हिसाब लगाने के लिए। अभी तो मज़े मज़े से सुन रहे हैं आप, कहते अच्छा नवा क्या होगा, वो भी बता देती हैं। दुनिया की अदालतों में अमूमन झूठी गवाहियाँ पेश की जाती हैं, अल्लाह की अदालत में झूठे गवाह नहीं होंगे, सच्चे गवाह होंगे। और वो जो सच्चे गवाह होंगे ना, वो कि दूर के नहीं होंगे, वो इंसान के अपने होंगे। नंबर एक, इंसान की जुबान। बंदा कहेगा मैं अपना गवाह खुद ढूंढूंगा, झूठ बोलेगा, अल्लाह जुबान पे मोहर लगा देगा। फिर उसके हाथ पांव, उसके जिस्म के तमाम अज़ा गवाही देंगे। क्या देंगे? सूरत नूर आयत 24। खास तौर पे मुझे हजरत आयशा पे बुख्तान लगा था, और मैं यहाँ बहनों को कहूंगी हम सब इस बारे में जरूर सोचें, बिला सोचे समझे किसी की बात आगे कर देना। किसी की बहू बेटी, किसी के शौहर, किसी के भाई, किसी के बेटे के बारे में ऐसे ही बेतुकी मार देना, बस ऐसी है, क्या बताऊं। जो अंदर से खारिश होती है ना, एक जुमला बोल गई मैंने अपने दिल का जलन उतार, खरीद नहीं आ जाता। जो बंदा हमें अच्छा नहीं लगता ना, आप नोट करें, हम जरूर उसके बारे में नेगेटिव बात करके जाएंगे, चाहे आधा जुमला बोले, टोन चेंज कर लेंगे। और क्यामत का दिन होगा, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम वाईदीहिम वर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। वो इस दिन को भूल ना जाएं जबकि इनकी अपनी जुबानें और इनके अपने हाथ पांव इनके करतूतों की गवाही देंगे। ये हाथों की गवाही, चिट चैट, टिकटॉक, क्या देखा, क्या खोला, किस वेबसाइट पे गए, कोई नहीं देखता, माँ नहीं देख सकती, उस बेचारी को पता ही नहीं हो, कहती बेटी काम कर रही है, स्कूल का पढ़ रही है। मियाँ साहब जी सुबह शाम कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको क्या पता मियाँ साहब क्या देख रहे हैं। बेटे बूढ़ों का नहीं पता, आज उनके ईमान खराब हो रहे हैं, आज इतना आसान हो गया गुनाह मरे हाथों में। और इसी तरह से फिर 10वां सूर, फैसला हाथ में लिया जाएगा। दुनिया में डिग्री मिलती है ना, वहाँ हाथ में मिलेगा। जिसके अमाल अच्छे होंगे इनका फैसला इनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिनके बुरे उनका दामे अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। कुरान की एक से ज्यादा आयतें, हम ममनूत या किताब हो भी यमीन ही फयकूल हाउ मुखर किताबिया। बस जिसका नामे अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहते लगेगा कि लो मेरा अमाल नामा पढ़ लो। वम्मा मनूत या किताब हो भी शिमाली ही फयाकूल या लई तनी लम ऊत किताबिया। और जिसका नामे अमाल उसके बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, वो कहेगा हाय काश मेरा अमाल नामा मुझे ना दिया जाता, यानी मेरा रिजल्ट ही गुम जाता, जंग लग जाती, पेपर चोरी हो जाता, सबको ऐसे ही पास कर दिया जाता, क्या बनेगा। और 11वां सूर लिख लीजिए, फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं होगी। दुनिया में हर फैसले पे अपील करने का इख्तियार होता है, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट में ले जाएं, इसके ऊपर कोई आप ऑब्जेक्शन लगा दें, वहाँ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हान तआला जो भी फैसला फरमा देगा, किसी की मजाल नहीं कि उसके ऊपर एक सवाल करे, एक उंगली उठा सके। हाँ, जिस पर अल्लाह ताला रहम करना चाहेंगे अल्लाह ताला उस पर रहम करेंगे। इसकी दलील भी सूरह काफ की आयत 29 है, मा युबद्दलुल कौलु लदैया, खत्म, कन्फर्म, हतमी, मेरे यहाँ बात पलटती नहीं, जो कह दिया वो होगा। अब आपने ये 11 असूल समझे, और अगर पिछली भी बातों को जोड़ लो ना, तो तकरीबन 15 मुख्तलिफ बातें हमने डे ऑफ जजमेंट के लिए देखी है। क्या इस वक्त आपको मुझे अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है? क्या हज़रत उमर का वो कॉल के हासिबु कबलन तो हासबु, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो यही मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी। ये दुनिया के रौले रप्पे, ये रोज़ के गम, रोज़ के मसले जो है, इस पे मत खोइए। सबसे बड़ा मसला जो आपको और आपकी नस्लों को, आपके बच्चों को लाहक है, वो क्या है, उसके लिए आपको एक मिसाल देती हूँ, ताकि आखिरत की उस कड़ी अदालत में जवाबदेही के लिए आज ही रिहर्सल कर लें। मुझे किसी ने कहा कि आजकल शादियों से पहले रिहर्सल होती है, मैंने कहा वो क्या? कहते हैं शादी से पहले दूल्हा दुल्हन डांस की रिहर्सल करते हैं। जी ये सच्चा वाक्य है, एक नहीं है, ये ऐसी हजारों दास्तानें हैं। लड़की लड़का जब भी गैर महरम है, वो उसी हॉल और उसी स्टेज पे आके आवाज़ों को चेक करते हैं कि कल जब सबके सामने नाचें कूदेंगे तो आवाज़ ठीक होगी, फिर उनके दोस्त साथी, फिर थीम्स, फिर ए से बी सी डी सी। क्या आपने मैंने आखिरत के लिए तैयारी की? मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप कहेंगे कोई एक, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस भी जा रही, मक्खियां भी हैं, ए से बी, ठंड हो गई, पता नहीं कुछ। चलिए समझते हैं। एक बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल में जाए, चलो सैर कराते हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बाप देख रहे हैं कि ज़मीन पे कीड़े मकोड़े हैं, जंगलों में होती हैं ऐसी चीज़ें। अब वो परेशान है, हाय ये चींटा ना चढ़ जाए, ये चींटी ना आ जाए, ये फलां बच्चे को काट ना ले। इतने में दूर से शेर घाड़ने की आवाज़ आए और ऐसे लग रहा है कि शेर इधर ही आ रहा है। क्या उस बाप को वो चींटियाँ चींटे याद रहेंगे? उसका सबसे बड़ा मसला क्या होगा? अपने बच्चों को इस शेर से बचाना है। उसको पूरे जंगल शेर दिखेगा, वो फिर चींटियों को भूल जाएगा, चींटों को भूल जाएगा। ये है तमसील। दुनिया के हर मसले, इवन बच्चों के रिश्ते कहाँ करें, शादी की थी दिल नहीं मिल रहा, बच्चे नहीं हो रहे, दामाद का कारोबार नहीं चल रहा, बेटे का घर नहीं बन रहा, यही होते हैं ना हमारे गाँव, उसकी गाड़ी खराब, वो बीमार है, ये सब चींटियाँ चींटे हैं। आखिरत का मसला शेर है। जिस दिन आपने मैंने अपनी और अपने बच्चों और अपनी नस्लों की आखिरत की फिक्र कर ली, दुनिया में कोई गम नहीं दिखेगा। जिंदगी के हर लम्हे को कीमती जाने, कहीं आज का जाया किया हुआ वक्त या गुनाह जिन्हें हम मामूली समझते हैं, कल उस अदालत में हमारे लिए बायस शर्मिंदगी और नदामत ना बन जाए। इसलिए कुछ कहने से पहले चंद चीज़ें अपने लिए नोट करें। कुछ कहने से पहले सोचिए, कुछ देखने से पहले सोचिए, कुछ बोलने से पहले, कुछ सुनने से पहले, किसी को इवन एक बॉडी एक्शन देने से पहले सोचिए कि मेरे इस एक्शन का रिएक्शन क्यामत के दिन क्या होगा। यही था जिसको सहाबा और हमारे बीच में एक हद फासिल कर ले। उनके लिए वो फिक्रे आखरत थी, हमारे लिए ये इल्मे आखरत है। एक जुमला नए साथियों के लिए, आपका मेरा आखरत के बारे में इल्म है, बचपन से सुनते आ रहे क्यामत आनी, जन्नत जहन्नम, ये है वो है, इसको फिक्र आखरत में ढालिए। फर्क कैसे? एक और मिसाल ले लें। आपका बच्चा वॉशरूम में गया नहाने के लिए और अंदर से एक आवाज आती है, अम्मी पानी गर्म है, उबलता पानी आ रहा है। ये भी एक खबर है, बहुत आपको मुश्किल लगेगी सुनकर बात। और दूसरा कह के आप खुद बेदहाली में शावर खोली, नीचे गई और उबलता पानी सर पे गिरा। दोनों में क्या फर्क है? सबको पता है। तो जो पहली मिसाल है ना, ये इल्म है आखरत का। झूठ है अगर इल्म है आखरत का, और झूठ नहीं छोड़ रहे, बेपर्दगी नहीं छोड़ रहे, नफरमानी नहीं छोड़ रहे, तो असल में इल्म को फिक्र में ढालना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जो भी कमी बेशी है उससे दरगुजर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो, और आप सबका भी जिन्होंने भी इस महफिल का एहतमाम किया अल्लाह कबूल करे। जिन बच्चियों ने कुरान पाक पूरा किया या जो भी उनको इल्मी कामयाबी मिली, अल्लाह उसको अमल की कामयाबी में ढल दे, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।